लौकिक दृष्टांत देकर के समझाया जाता है, किंतु वास्तु के बीच के वहाँ समझाया नहीं जा सकता। तुलसीदास जी ने कहा है श्री राम और भरते का जो प्रेम है और वो उनका दोनों का प्रेम का जो मिलन है वो कवि की वाणी का विषय नहीं है, कवि उसे को वाणी के द्वारा नहीं कह सकता है। जैसे दुनिया की जो तांत है वो स्वराग को नहीं गा सकती, इसी प्रकार से थी कवि की वाणी भगवान राम और भरत के प्रेम को वर्णन नहीं कर सकती। और बतलाया जाता है कि जैसे दुनिया को स्वाद का आनंद आता है और उस आनंद का वो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकता, इसी प्रकार से थी प्रेम जो है ऐसी चीज है। नारद जी कहते हैं कि प्रेम जो है नित्य नया बढ़ता ही रहता है, वो पीछे को नहीं चलता। जो प्रेमी है भगवत प्रेमी है वे भी एक प्रकार से प्रेम के विषय को वाणी के द्वारा नहीं वर्णन कर सकती। तो मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति उसे प्रेम को कैसे कहे। फिर भी प्रेम की जो चर्चा है वो करनी अच्छी है, इस बात को लेकर के कुछ कहा जाता है। प्रेम जो है जहाँ अपनता होती है, जहाँ ममता होती है वहाँ होता है, जिसमें आत्मीयता होती है कि ये मेरा है वहाँ प्रेम होता है। तो प्रेम के लिए भगवान के समान और कोई भी नहीं है कि जिससे प्रेम करना चाहिए। भगवान परम हितैषी है, उनके समान दुनिया में कोई भी हितैषी नहीं है। तो सीता जी कहती हैं तुलसी प्रमाण के मां बतला है
उमाराम सम थी तू जग मानी गुरु पी तो मातु बंधु के
का वचन है। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, राम के समान हितैषी हित करने वाला दुनिया में कोई भी, सबसे हित करने वाला जो गुरु है आचार्य है वो भी राम के समान नहीं है। माता पिता गुरु बंधु कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सब पराय करके स्वार्थ के मित्र ही होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति वाले पुरुष को छोड़कर के अपने स्वार्थ के बिना बात नहीं करते, बात बात में अपने स्वार्थ की तरफ ध्यान रखते हैं। जैसे गिद्ध पक्षी की दृष्टि मांस की तरफ रहती है, इसी प्रकार से थी स्वार्थी आदमी की दृष्टि अपने स्वार्थ सिद्ध की तरफ ही रहती है। कोई भी काम करते हैं तो पहले यह बात आती है इसमें मुझको क्या मिलेगा, मेरे को इसमें क्या लाभ होगा। दुनिया के लाभ की तरफ कोई नहीं देखता। परमात्मा की प्राप्ति वाले पुरुष को छोड़ के दूसरे चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, उनकी रीति यह है सुर नर मुनि सब की यही रीति। स्वार फैलाग कर सब प्रीति
जी
असुर जो देवता है और नर जो मनुष्य है और मुनि जो साधक हैं, ऋषि मुनि लोग जो बने रहने वाले, उन सब की यही रीति है कि अपने प्रयोजन को लेकर ही प्रीति करते हैं। उन मुनियों के बीच में कोई एक, उन साधकों के बीच में कोई एक भगवत प्राप्त पुरुष है, ज्ञानी महात्मा है, उसकी बात अलग। के लिए तो तुलसीदास जी ने यह कही कि वो तो भगवान के ही तुल है। हे तू रहित जग जुग उपकारी,
हे तू रहित जग जुग उपकारी,
तू मैं तुम्हार सेवक असुरारी, हे असुररी प्रजा सो भगवान को करी प्रतिगत प्रमाण के उत्तरकांड के नाम की भगवान हेतु रही थे छीत करने वाले या तो आप हैं या आपके भक्त, बाकी तो सब स्वार्थ की। स्वार्थ नीत सकल जग माही,
स्वार्थ नीत सकल जग
सपने हो प्रभु परमारथ नाही,
सपने हो प्रभु परमारथ
नाही। सेना सब कोई अपने स्वार्थ के ही मित्र हैं, अपने को लेकर ही मित्रता करते हैं। स्वार्थ को त्याग करके मित्रता करने वाला इस दो को छोड़कर तीसरा और कोई नहीं। इन्होंने भी आपको बताया कि भगवान के समान भगवान है, तो यह बात समझ करके कि भगवान ही एकमात्र हमारे परम मित्र हैं, भगवान ही एकमात्र हमारे हैं और उसके समान कोई भी हमारा नहीं है, ऐसी परिस्थिति के वहाँ हमको भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। और भगवान हमारे आत्मीय जन है, क्योंकि भगवान सबकी आत्मा है। हम आत्मा गुरा के सर्वभूता से हे गुरा के सब भूतों के हृदय में स्थित मैं सबकी आत्मा हूँ। जैसे शरीर के मालिक माता पिता है, क्यों कि शरीर उस माता पिता का अंश है, इसी प्रकार से थी जो जीव है ये परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश होने से एक प्रकार से उसका एक अंग ही हो गया। ऐसी स्थिति के वहाँ भगवान को छोड़कर के दूसरे से प्रेम करना तो मूर्खता ही है। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमर सहज सुखराशी,
चेतन
ये जीव जो है ईश्वर का अंश है। ईश्वर का कोई टुकड़ा नहीं होता, किंतु टुकड़े की जुई मान उसका एक अंग की जुई है। ये जीवात्मा जो है ईश्वर का ही एक अंश है और ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। शरीर का ही विनाश होता है और शरीर के बदलने को ही हम कहते हो अमुक आदमी मर गया, किंतु आत्मा तो नित्य है, उसका तो विनाश होता ही नहीं, क्यों ईश्वर का अंश है ना। ईश्वर का जैसे विनाश नहीं हुआ अविनाशी है, ऐसे जीव भी अविनाशी है और ये चेतन है, जड़ नहीं है। शरीर है सो जड़ है और आत्मा है सो चेतन है। चेतन और जड़ की यह बात है कि जो चीज जानने में आ रहा है वो तो जड़ है और जानने वाला वो चेतन है। तो जीवात्मा जानने वाला है, जानने में आने वाला पदार्थ नहीं है, इस वास्ते चेतन है। और वास्तव के मां मल रहित है, माया से रहित है, दोषों से रहित है, जीवात्मा शुद्ध स्वरूप है, किंतु अज्ञान के कारण अपने को माया से समझ जोड़ करके और ये दोषी बना हुआ है। वास्तव के मां मल रहित शुद्ध और स्वाभाविक ही आनंद की राशि है, सुख की राशि है। एक तो निमित्त को लेकर के आनंद होता है आगंतु, वो जो आनंद हो तो माया का ही कार्य है। चाहे सात्विक आनंद भी क्यों नहीं हो, वो तो माई की है, वो स्वाभाविक नहीं है। जिसका कि सहज सुख राशि, सहज जो शब्द है ये बताता है कि वो एक प्रकार से सुख में विकार के रूप में नहीं है। और सात्विक राशि तामसी जो सुख है ये सब विकार रूप है, क्योंकि ये माया का ही गुण है। सतर वो गुण अतीत है, उसका जो स्वरूप है, जीव का जो स्वरूप है वो चेतन है और आनंद में है। भगवान का जैसा स्वरूप है उसका अंश का भी तो वैसा ही होगा ना, तो इसलिए भगवान का जैसा स्वरूप सत्चिदानंद घन है और निर्मल शुद्ध है, इसी प्रकार से जीवात्मा का स्वरूप भी वैसा ही, इसीलिए कहा जाता उसका अंश है और उस अंश के साथ में प्रेम करना ही इसका कर्तव्य है। ये उसकी मूर्खता है जो ऐसे ईश्वर को बुला करके और मिथ्या सांसारिक पदार्थों के साथ में प्रेम करता है, ये इसकी अज्ञता है। जब ये बात समझ में आ गई तो हम लोग जानबूझ करके मूर्ख क्यों बने, कोई किसी को मूर्ख कह देता है तो वो उसको बुरा मालूम देता है और दिन भर काम वही करता है जो मूर्ख ने करना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी क्रिया हम लोगों की प्राय अज्ञतापूर्ण होती है, विवेक पूर्वक कहा होती है। यदि अज्ञता को मूर्खता को एक ही बात है, यदि ज्ञान न हुए तो हमारी सारी क्रिया विवेक पूर्वक होनी चाहिए। ईश्वर की और महापुरुषों की जो क्रिया होती है वो सारी विवेक पूर्ण होती है, तो हम लोगों को भी ये विचार करना चाहिए। ईश्वर को छोड़कर के किसी के साथ में हम स्वार्थ को लेकर के प्रेम करते हैं वो प्रेम नीचे दर्जा का है, घृणित है, उसका आदर न तो यहाँ है और न परलोक में ही है। इस बात को समझ करके संसार के विषय भोगों से प्रेम हटा करके और केवल एक भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। एक तो स्वाभाविक प्रेम होता है, उसको सहज प्रेम कहते हैं, ये उत्तम दर्जा का है और ये होना चाहिए इस में। दूसरी तरफ हम ख्याल करें, स्वार्थ की तरफ ख्याल करें, गुणों की तरफ ख्याल करें, सुंदरता की तरफ ख्याल करें, प्रभाव की तरफ ख्याल करें, तो भगवान के समान संसार में न कोई गुणी है, न कोई प्रभावशाली है और न कोई सुंदर है, तभी भगवान में होना चाहिए। सारी दुनिया का जो सौंदर्य है इसको इकट्ठा करने पर भगवान जो एक सौंदर्य के केंद्र है उसकी एक कला भी नहीं हो सकती, सब मिलकर के दुनिया का सौंदर्य उसके एक अंश के समान भी नहीं हो सकता। ऐसे श्याम सुंदर भगवान विष्णु को या राम को या श्री कृष्ण को छोड़कर के दुनिया से प्रेम करना, मोहित करना, ये तो मूर्खता ही है। गीता ने बताया भगवान अपनी प्राप्ति के साधनों के बीच के माँ, यानी प्राप्ति का साधन जैसे ज्ञान है, तो साधन ज्ञान के जो साधन है जैसे ज्ञान है, तो कहते हैं कि नई चामिन योगी ने भक्ति, नई चामिन योगी ने भक्ति वाले विचार ली देश से ही तुम अर्थ अर्जुन निज परमात्मा में अनन्य योग के द्वारा अभिविचारिणी भक्ति, बड़ा उत्तम साधन है ज्ञान का। निज परमात्मा में अनन्य योग के द्वारा अभिविचारिणी भक्ति, जिसमें व्यविचार दोष नहीं रहते भक्ति के मां, व्यविचार दोष क्या भक्ति माने प्रेम, विशुद्ध प्रेम, अभिविचारिणी भक्ति माने विशुद्ध भक्ति जिसमें कोई दोष नहीं हुए। दोष क्या कामना को दोष, कोई प्रकार की कामना जो है यही एक प्रकार से जो कि महिलापण है, निष्काम भक्ति। और अनन्य योग क्या कि मेरे को छोड़ करके किसी में भी प्रेम नहीं हुआ, किसी में भी भक्ति नहीं हुआ और किसी के लिए भी नहीं हुआ, किसी में भी नहीं हुआ, ऐसी मुझ परमात्मा के बीच में अनन्य भक्ति हुए और वो विशुद्ध भक्ति हुए और एकांत देश का सेवन और जन समूह के बीच में आरति मैंने प्रीति का अभाव, यानी किसी के बीच के मन भी मेरे को छोड़कर और किसी में प्रीति नहीं हो, इसी बात को खुलासा करके ये बात समझाई, ऐसी भगवान के माँ भक्ति होनी चाहिए। और विचार करना चाहिए थोड़ा गहरा, वो बात समझ में आ जाए तो भगवान के माँ प्रेम होनी, विशुद्ध प्रेम, परम प्रेम, अनन्य प्रेम, पूर्ण प्रेम, जिन शब्दों से आप समझो ऐसा शीघ्र हो सके। एक क्षण भी हम भगवान को छोड़ करके दूसरी वस्तु में प्रेम करते हैं उसमें जो हमारे नुकसान होता है, हानि होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब भगवान के वहाँ हमारा अनन्य प्रेम हो जाएगा तो उसकी कसौटी यह है कि हर वक्त भगवान की स्मृति होती रहेगी, हमको भगवान की स्मृति करनी नहीं पड़ेगी, वो स्वतः स्वाभाविक आप ही होती रहेगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि संसार के पदार्थों के बीच में हमारी कुछ प्रीति है, तभी तो ये मन भगवान को छोड़कर संसार की तरफ जाता है। इसको कोई पूछे कि तू क्यों जाता है, संसार में जो कुछ प्रभाव प्रतीत होता है किसी पदार्थ का वो सब भगवान से ही है, जो कुछ विभूति प्रतीत होती है वो भगवान की है, जो कुछ बल है, तेज है या ज्ञान है, जो भी कुछ संसार के बीच के माँ अच्छी चीज है वो भगवान का ही एक अंश मात्र है। भगवान कहते हैं गीता में कि यदि यदि विभूति में सत्वम श्री मुदूर जीत वेवागछम तो मम तेजंस संभम। गीता की दूसरी अध्याय के 41 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि यदि विभूति मत, अर्जुन जो जो विभूति वाली चीज है जो दसवीं अध्याय के में भगवान ने कुछ संक्षेप कुछ विस्तार से जो विभूतियाँ बतलाई है वो सारी की सारी विभूतियाँ भगवान कहते हैं मेरा जो एक प्रभाव है तेज है उसका एक अंश मात्र का प्रादुर्भाव है। ये जो विभूति वाली चीज है तेज विभूति वाली नहीं जो बल वाली चीज है केवल बल वाली नहीं जो कांति वाली चीज है सोलह वाली चीज है वो सब जो है तो मेरा जो तेज है मेरा जो प्रभाव है उसका जो एक अंश उस एक अंश का ही सब प्रादुर्भाव। तो इससे आप सोचो कि संसार में यत्किन चीज जो भी कुछ आपको किसी का भी प्रभाव दिखता है वह सब भगवान से ही भगवान के प्रभाव के अंतर्गत तो भगवान के समान कोई प्रभावशाली नहीं। अरे वास्तव में भगवान गुणातीत होता ही नहीं और सारे गुण भगवान में होने के नाते विचार किया जाए तो ये गुरु का समूह रूप सारा संसार भगवान के एक अंश में है। अथवा बहुन एतेन किं जातेन तव अर्जुन विश्वद्वय मिलन कृष्ण मेका अंशेन चितो जग। अर्जुन तुम्हारे को बहुत जानने से क्या प्रयोजन है इस संपूर्ण जगत को मैं अपने एक अंश करके धारण की हुई से यानी सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में है तो मेरे से बाहर क्या रह गया कोई भी चीज बाकी नहीं। तो भगवान से बढ़कर कोई प्रभावशाली नहीं हूँ पर भगवान से बढ़कर के कोई गुण नहीं भगवान से बढ़कर स्वभावयुक्त कोई सुंदर नहीं। तो हम संसार की तरफ किस लिए दौड़ रहे हैं संसार की चमक दमक को देख करके के और हम उस तरफ क्यों से दूर लगा रहे हैं। तो ये हमारी मूर्खता है बेसमझी है। यह बात समझ में आ जाए तो भगवान में उसको अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाए और अनन्य विशुद्ध प्रेम हो जाए तो फिर भगवान के साथ दूसरी चीज को ये चिंतन ही क्यों करे और अनन्य जो चिंतन है उससे भगवान की प्राप्ति अपने आप सुगमता कर जाए सहज हो जाए जुलम को काम भी अनन्य चेता सततम युवान समृति नित तस्यानु सुलभ पार्थ नित्य युग तस्य योगी न अनुचेता सप्तम योगांग समृति नित्य अनुचित हुआ पुरुष जो नित्य निरंतर ये मेरे स्वरूप का स्मरण करता है यानी मेरा चिंतन करता है उस नित्य युक्त योगी भक्त के लिए मैं सुलभ हूँ कोई परिश्रम का काम नहीं। यह बात भगवान ने गीता की आठवीं अध्याय के चौदह के श्लोक में कही उनसे बदले की बात है। भगवान कहते हैं कि जो मुझको अपने हृदय में बसा लेता है उसको मैं अपने हृदय में बसा लेता हूँ। कल रात को एक कहानी आपको कही थी भगवान ने ये बात रुक्मिणी जी के प्रति कही कि राधिका जी मेरे हृदय में बसती है और मैं राधिका जी के हृदय में बसता हूँ। तो ये तो एक समझाने के लिए एक नियम बदला दिया किन्तु भगवान का हृदय बड़ा विशाल है। कोई भक्त भगवान का ध्यान करता है तो भगवान उसका ध्यान करते हैं। ये प्रतिज्ञा भगवान की ये था मन प्रपद्यन्ते तं सती भजामि हम जो जिस प्रकार से मुझको बसते हैं उनको मैं उसी प्रकार से बसता हूँ दूसरी प्रकार से नहीं। और हृदय में बसाने की बात भी सुन भगवान गीता में कहते हैं समूहं सर्वभूते सो मैंने जोशो से रह पड़ी है और ये भजंती तुम्हें भक्त्या और मई ते सो चापे हम सब भूतों के बीच के माँ मैं समभाव से हूँ। समान बात तो यह है कि भगवान कहते हैं मैं सबके बीच के माँ समान भाव से हूँ सब में समान भाव।